अभी हम सभी के समक्ष उपस्थित है हमारे आदरणीय वरिष्ठ राज्यों की शिक्षिका शीलू दीदी जी, जिनके लिए हम कहेंगे कि सरलता, सत्यता, स्पष्टता और सहजता सरस्वती के श्रृंगार हैं, पवित्रता, पॉजिटिविटी और पावरफुल शब्दों सा गंगा का बहाव है, जिनकी दिव्य प्रतिभा से बना देती हमारे जीवन को वरदान है। ऐसी ही महान विभूति हम सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो अपने छोटी सी 12 वर्ष की अल्पायु से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। दीदी जी ने अपना सांसारिक प्रशिक्षण वैज्ञानिक स्नातक में कंप्लीट किया और उसके साथ साथ आध्यात्मिक प्रशिक्षण में रुचि रखते हुए 1969 में 21 साल की उम्र में ही इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मानव कल्याण हेतु ईश्वरीय सेवाओं में अपना जीवन समर्पित किया। दीदी जी ने 1970 से 74 तक बैंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद तथा मुंबई में अपनी सेवाएं प्रदान की। 1974 से 76 तक दीदी जी ने अफ्रीका के कुछ देशों में और मॉरिशियस के कई देशों में ईश्वरीय ज्ञान की गंगा बहाई। दीदी जी के लिए है कि दीदी जी ने पांचों महाद्वीपों में 70 से भी अधिक देशों में ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश बिखेरा है। 1976 से आदरणीय दीदी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो मेन हेडक्वार्टर माउंट आबू है, वहाँ के तीनों ही जो हमारे संस्थान है, शांतिवन, ज्ञान सरोवर और पांडव भवन, इन तीनों ही स्थानों पर दीदी जी हजारों लाखों की संख्या में अनेक आत्माओं को राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से तनाव प्रबंधन, पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे कई विषयों पर दीदी जी सेशंस लेते रहे हैं और अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते रहे हैं। इसी के साथ साथ दीदी जी 1993 में टीवी चैनल्स के माध्यम से, जैसे कि जी टीवी, सोनी टीवी, आस्था तथा संस्कार टीवी के माध्यम से दीदी जी के कई सारे सेशंस का जो है प्रसारण होता रहा है। तो इस तरह से दीदी जी राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के आध्यात्मिक जो प्रभाग है, शिक्षा प्रभाग है, दीदी जी उनके वाइस चेयरपर्सन है। तो इस तरह से आज हम सभी के बीच में एक बहुमुखी प्रतिभा उपस्थित हुई है इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संक्षिप्त परिचय को लेकर, जिसके ऊपर दीदी प्रकाश डालेंगे। हम आदरणीय बहनों से निवेदन करते हैं कि दीदी को तिलक और तुलसी का पौधा देकर दीदी जी को वेलकम करें। ओम शांति।
ओम शांति। सभी कहेंगे एक साथ मेरे बाद, ओम शांति। पिछले 2-3 दिनों से आप सुबह से लेकर रात्रि तक विभिन्न विषयों द्वारा बहुत कुछ सुन रहे हैं हमारे अलग अलग वक्ताओं से। यहाँ के जो भिन्न भिन्न परिसर है वो भी आपने देख लिए होंगे या देखेंगे। तो इन सब बातों से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आप कहाँ आए हैं। यह शांतिवन, ये ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर्स, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। ये कोई केवल एक सत्संग हॉल नहीं है जहां साधु संत महात्मा, कोई विद्वान पंडित, कोई गुरु गुसाई एक प्रवचन करे या कोई पूजा पाठ जप तप शास्त्र अध्ययन ये हो, ये सब नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और अगर हम कहें ये फैमिली इंस्टीट्यूशन है तो भी गलत नहीं, क्योंकि परमात्मा जो हम सर्व आत्माओं के परम पिता हैं, उनके हम सब बच्चे हैं, उनका ही यह ईश्वरीय परिवार है। तो यह परिवार भी है, साथ साथ यूनिवर्सिटी भी है और साथ साथ ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है। जैसे यज्ञ में स्वाहा किया जाता है, यहाँ हम अपने बुराइयों को स्वाहा करते हैं। तो अवश्य आपके मन में विचार आया होगा कि ये शुरू कैसे हुआ और अब तक कहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो मैं आपको एक सुंदर यात्रा पर ले जाऊंगी। इस यात्रा में आपको आंखों देखा हाल जो हमने भी अनुभव किया है वो भी आपको बताऊंगी। तो एक दिव्य कहानी के रूप में है जिसका बीज पिता श्री ब्रह्मा बाबा थे, जिनको 60 वर्ष की उम्र में 1936 में अनेक दिव्य साक्षात्कार हुए। वो हैदराबाद सिंध में रहते थे और 1936 तो अविभाजित भारत था, सिंध हैदराबाद वो भारत का ही हिस्सा था, वहाँ बाबा रहते थे। और आप एक बहुत बड़े जौहरी थे, हीरे जवाहरातों के जेवर बेचते थे, बहुत बड़ा व्यापार था, राजाओं महाराजाओं के साथ उनका उठना बैठना था। तो धनी थे, बिजनेसमैन थे, हीरे जवाहरातों के जेवर कौन खरीदेगा जो बहुत धनवान होगा। तो राजा महाराजा आते थे या अंग्रेज आते थे, उस समय अंग्रेजों का राज्य था, और इनका भी वहाँ जाना होता था, राजाओं से मिलना होता था, अंग्रेजों से भी मिलना होता था। तो जितने ही धनी थे उतने ही बहुत बड़े दानी भी थे और उतने ही बहुत बड़े भक्त भी थे। तो कैसे परमात्मा ने उनको अपना माध्यम बनाया उसकी कहानी मैं आपको अब बताना चाहूंगी। एक साधारण व्यक्ति से वे कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बने, जो नाम उनको परमात्मा ने दिया, सारी प्रजा का पिता, आदि पिता, जिसको हम एडम आदम ब्रह्मा नाम कहते हैं, रचयिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची। तो ये अभी समय है एक नई सृष्टि रचने का। तो कौन थे पिताश्री ब्रह्मा बाबा, कैसे उन्होंने अपनी जो चल अचल संपत्ति माताओं और बहनों के आगे अर्पित की, एक बीज बोया और आज वो बीज एक वट वृक्ष की तरह सारे विश्व में इसकी ब्रांचेस के रूप में फैला हुआ है। 140 देशों में इसकी ब्रांचेस है और हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है। अनेक भाई भी हैं और आप जैसे लाखों परिवार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विभिन्न ब्रांचेस में नियमित विद्यार्थी बन करके आते हैं, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, धंधा व्यापार नौकरी करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए अपना एक घंटा समय रोज हमारे सेवा केंद्रों पर देते हैं और यह ईश्वरीय स्टडी पढ़ते हैं। इनका पूर्व नाम दादा लेखराज था। दादा माना बड़ा भाई, सिंधियों में बड़े भाई को दादा कहते हैं, तो सिंध में जो भी बड़े बुजुर्ग थे उनको दादा कहते थे और बहुत रॉयल थे। लखीराज बाबू के नाम से वो बहुत प्रख्यात थे, लखीराज। तो जैसे एक राजा की तरह बड़े रॉयल थे, वो राजा महाराजा बाबा को कहते थे कि भगवान ने बड़ी भूल कर दी, राजा तो आपको बनाना चाहिए था और हमें राजा भगवान ने बना दिया और आपको बिजनेसमैन बना दिया। तो बाबा कहते थे भगवान कभी भूल नहीं कर सकता, मैं तो जो परमात्मा ने हमें आदेश दिया है वही निभा रहा हूं। बहुत सुखी परिवार था उनका, 5 बच्चे थे, 3 बेटियां थी और 2 बेटे थे। बड़े बेटे की तो शादी हो चुकी थी, 2 बेटियों की भी शादी हो चुकी थी। सुखी परिवार था, उनके भी बच्चे थे। लेकिन बाबा के अंदर एक प्यास थी, हालांकि बहुत दानी थे, कोई भी उनके घर पर आता था, द्वार पर आता था, कभी भी हाथ खाली उनको भेजते नहीं थे, खूब भरपूर करके भेजते थे। तो दानी तो थे ही, धनी भी थे ही, लेकिन एक खोज थी। किस बात की खोज? सत्यता की खोज, सत्य को जानने की खोज थी। सत्य क्या है, ईश्वर कौन है, हम कौन हैं, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसकी वो समझ वो उनको चाहिए थी। और इसके लिए उन्होंने बहुत शास्त्र पढ़ डाले और अनेक गुरु भी किए, लेकिन कहीं से भी उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आयु उनकी 60 वर्ष हो चुकी थी, तो कैसे अचानक एक दिन, जिस पल के बाद उनका जीवन बदल गया, अचानक एक दिन उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु चतुर्भुज उनके सामने आकर के उपस्थित हुए और दर्शन दिया और उनको वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम भी मेरे जैसे हो। और विष्णु के कई रूप उनके सामने आते गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और हर रूप ने विष्णु के चतुर्भुजधारी विष्णु चतुर्भुज चंग चक्र गदा पद्मधारी उनके सामने आकर दर्शन दे रहे थे और एक एक रूप ने यही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम भी मेरे जैसे हो। तो जब ध्यान से नीचे उतरे तो बाबा को कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसा मुझे वरदान मिला। कई ऐसे होते हैं भक्त, तो जिसके भक्त होते हैं उनको उनका दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, लेकिन अक्सर करके जो वरदान मिलता है उनको अपने इष्ट से वो होता है तथास्तु। ऐसा वरदानी हाथ दिखाकर कहते तथास्तु, माना वैसा ही होगा, अर्थात आपकी इच्छा पूरी होगी, तथास्तु ऐसा ही होगा। अब बाबा को तो कोई इच्छा नहीं थी, एक ही इच्छा थी कि सत्य को जानूं। तो जब विष्णु का साक्षात्कार इस रूप से हुआ कि तुम मेरे जैसे हो, तो बाबा के मन में प्रश्न उठा, मैं इन जैसे कैसे हूं, मैं तो इनका भक्त हूं, इनका दास हूं, इनका सेवक हूं, मैं तो इनकी भक्ति करता हूं, क्योंकि भक्ति भी इनकी बहुत अटूट थी। कोई ऐसा मंदिर उन्होंने छोड़ा नहीं होगा जहां दर्शन करने न गए हो, अमरनाथ की भी यात्रा की थी। तो मैं जैसे कैसे हूं, ऐसा कैसा वरदान मुझे मिल गया, तो अपने गुरु से पूछा। अब गुरु ने भी जहां तक समझा उसी अनुसार गुरु ने कहा, हो सकता है कि भगवान को आपसे कोई बड़ा काम करवाना है, इसीलिए आपको दर्शन होकर वरदान मिला कि आप मेरे जैसे हो, तत्त्वम। तो भगवान का कार्य आपको कुछ करना है। तो उन्होंने कहा कि कौन सा कार्य मुझे करना है, वो भी तो मुझे मालूम हो, क्या करना है, मैं तो बिजनेसमैन हूं, परिवार है मेरा, धंधा है, और जो मैं यही सो कोशिश करता हूं कि सच्चाई के मार्ग पर चलूं, दान पुण्य करूं, भक्ति करूं, शास्त्र पढ़ूं, तो भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, हे भगवान आप मुझे बताएं, आप जो कहेंगे मैं करने लिए तैयार हूं। तत्त्वम का वरदान मिल गया। तो गुरु ने उनको कहा, उसके लिए आप और अगर ईश्वर से उत्तर चाहते हो तो एकांतवास में चले जाओ। एकांतवास में आप चले जाएं तो वहां आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी कि भगवान आपसे क्या कराना चाहते हैं। तो इनका व्यापार तो कलकत्ता में था, बहुत बड़ी शोरूम थी, हीरे जवाहरातों के जेवर बाबा बनवाते थे और बेचते थे। तो उन्होंने सोचा मैं एकांतवास के लिए बनारस जाता हूँ। बनारस में उनके एक मित्र रहते थे, उनकी कोठी थी, बहुत बड़ी कोठी और बहुत बड़ा बगीचा बनारस में। तो वहां जाकर मैं तपस्या करूंगा, एकांतवास करूंगा, ताकि मुझे और अनुभव हो कि भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। तो बाबा बनारस चले गए और बनारस में रोज विष्णु का ध्यान करते थे। तो अचानक एक दिन संध्या के समय बाबा को इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ, महाविनाश। और बाबा ने देखा तीन रूपों से विनाश हो रहा है संसार का। एक रूप था अणुयुद्ध, एटॉमिक वॉर, हवाई जहाज मंडरा रहे हैं और कुछ गिरता है मिसाइल, और जहां वो मिसाइल गिरता है वहां विनाश हो जाता है और आग ही आग निकलती है। फिर दूसरा रूप बाबा ने देखा विनाश का, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान, बिजली, मानो सब कुछ, पांचों ही तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इतना कहर मचा रहे हैं एक साथ, जो देखते ही देखते बाबा ने देखा सब कुछ जलमग्न हो गया, प्रलय जैसी स्थिति हो गई। फिर तीसरी ओर बाबा ने क्या देखा कि गृह युद्ध हो रहा है, सिविल वॉर, इतना जबरदस्त सिविल वॉर जहां रक्त की नदियां बह रही है, लोग एक दो का सिर काट रहे हैं, बंदूकें चल रही है, तलवारें चल रही है, और देखते ही देखते खून की नदियां चारों ओर और एकदम शमशान, इतने सब मर गए। अब ये सब देखने के बाद बाबा को कुछ समझ में नहीं आया कि ये मैं क्या देख रहा हूं और ये क्यों देख रहा हूं। लेकिन एक बात उनकी बुद्धि में आई कि इस दुनिया से उनको वैराग आ गया, बिल्कुल वैराग। नहीं तो हीरे जवाहरातों का बिजनेस कोई कम नहीं होता है। वैराग आ गया इस संसार से। लेकिन वो अपना विष्णु का ध्यान तो कर ही रहे थे। फिर एक दिन की बात है जो बाबा को एक सुनहरा लाल प्रकाश दिखाई दिया, जिसमें उल्टा झाड़ दिखाई दिया, और वो उल्टे झाड़ में छोटे 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 सितारे दिखाई दिए, उसका बीज ऊपर और झाड़ नीचे। और फिर धीरे धीरे देखा कि उस सितारों के झाड़ से छोटे 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 सितारे धीरे धीरे नीचे आने लगे, और नीचे आते आते धरती पर पहुंचे, और धरती पर पहुंचते ही एक एक सितारा एक एक देवी और देवता का रूप धारण करता गया, और धीरे धीरे इतना सुंदर नजारा बाबा ने देखा, इतना जो कहर देखा था पांचों तत्वों का, अब बाबा ने देखा ये पांचों ही तत्व इतना सुंदर रूप लेते जा रहे हैं। चारों ओर हरियाली, चारों ओर इतना सुंदर मौसम, फव्वारे, खुशबू खुशबू, मोर नाच रहे हैं, और देखते ही देखते बाबा ने देखा देवी देवताएं इस संसार के अंदर विचरण करने लगे, रास चल रही है, रास मंडप सज रहे हैं, बहुत कुछ सुख ही सुख, और हीरे जवाहरातों के महल ये बाबा ने देखे। और फिर क्या देखा, उस महल में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, बहुत सुंदर सोने का सिंहासन जो हीरे जवाहरातों से जड़ा था, वहां लक्ष्मी नारायण विराजमान, और धीरे धीरे वो सिंहासन से उठे और महल के बाहर आए, और बगीचे में जैसे टहलने लगे, फव्वारे चलने लगे, और खुशियों में सब नाचने लगे, मानो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का दर्शन उन्हें हुआ। और फिर उन्हें एक आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। तो एक तरफ विनाश देखा और एक तरफ नई सत्यों की दुनिया देखी, और उस समय उनको ये आवाज आई, एक आकाशवाणी, ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। तो बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसी दुनिया मुझे बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास क्या शक्ति है जो मैं सारी दुनिया को बदल दूंगा और ऐसी स्वर्गीय सत्यु की दुनिया लाऊंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर थी कि बाबा को वैराग आ गया इस कलयुगी दुनिया से। तो उन्होंने सोचा सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ, बनारस में तो थे ही, तो मैं बनारस से कलकत्ता जाता हूँ, बहुत दूर तो नहीं कलकत्ता, मैं वहाँ जाकर के अपने जो पार्टनर थे उनके भागीदार, उनको मैं सारा बता दूँ कि अब मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, मेरे से ये व्यापार नहीं होगा, क्योंकि जो हीरे थे ना, बाबा को वो हीरे पत्थर दिखाई देने लगे। अब पत्थरों की क्या बिजनेस करेगा, हीरों की तो बिजनेस होती है, लेकिन पत्थर दिखाई देने लगे, सारी दृष्टि उनकी बदल गई, संसार से वैराग आ गया और अपने भागीदार को सब कुछ बताकर कहा कि अब मैं अपनी बिजनेस वाइंड अप कर रहा हूँ और जो मेरा हिस्सा है वो मैं लेके वापस अपने घर जो हैदराबाद सिंध में था वहाँ वापस जाना चाहता हूँ। तो भारत तो एक ही था, 1936 की ये बात है। तो बाबा वापस हैदराबाद सिंध चले गए, लेकिन बिल्कुल बदले हुए, धोती कुर्ता सफ़ेद पहनने लगे और एकदम न्यारे, जैसे कि उनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और न्यारे होकर के एकांत में बस अपना विष्णु का ही ध्यान करते रहे अपने कमरे में। तो अचानक एक दिन बाबा को अपने ही कमरे में शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का उनको ऐसा सुंदर दिव्य साक्षात्कार हुआ, जो बाबा उस स्वरूप को देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। और फिर बाबा ने क्या देखा कि वो जो ज्योति स्वरूप था शिव परमात्मा का साक्षात्कार, वो शिव परमात्मा ज्योति धीरे धीरे उनके उनके अंदर प्रवेश हो गए, और जैसे प्रवेश होकर के यहाँ विराजमान हो गए। और उस समय उनकी आंखें तो बंद थी, लेकिन आंखें बंद होते हुए भी उनके मुख से कुछ शब्द निकलने लगे, जैसे कोई दूर की आवाज हो और आकाशवाणी हो। वो शब्द क्या थे, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निजानंद रूप हूं, मैं शिव हूं। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं ज्ञान का स्वरूप हूं, मैं शिव हूं। प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। अब ये आवाज बाबा की नहीं थी, जैसे अंदर से कोई गहरी आवाज, जैसे आकाशवाणी की आवाज निकली। अब ये उनके रिश्तेदारों ने देखा, क्योंकि बाबा तो अपने कमरे में बैठे हुए थे। तो जब आंखें खोली तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया, क्योंकि ये आवाज के कहां से आई, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, ये कौन बोल रहा था। तो बाबा आपने क्या अनुभव किया, तो बाबा ने बस दो शब्द कहे, नशे में तो थे ही, और दो शब्द कहे कि कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, और वो धीरे धीरे मेरे में समा गई। ये बस बाबा के शब्द निकले मुख से, अब मुझे कुछ पता नहीं, और मुझे कुछ पता नहीं। बस फिर तो क्या हुआ, चमत्कार होने लगे। चमत्कार कौन से चमत्कार, सबसे पहला चमत्कार तो ये होने लगा कि बाबा खड़े थे, सफेद वस्त्रधारी एक बूढ़ा व्यक्ति, हाँ, और वो रूप बदल कर वहां श्री कृष्ण खड़े हैं, ये सबको दिखाई देने लगा। बहुत सुंदर छवि श्री कृष्ण की, बांसुरी बजाता हुआ और मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण वहां खड़ा है। तो जो लोग आते थे वो तो हैरान हो जाते थे, ये तो साकार बूढ़ा आदमी सफेद वस्त्रधारी ये बदल कर ये श्री कृष्ण कैसे हो गया। चमत्कार होने लगे, कईयों को अपने घर बैठे भी चमत्कार ये दिखाई देने लगे, साक्षात्कार होने लगे। कोई तो वहां जाकर के बाबा से अनुभव करने लगे। तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों को ये एक आवाज फैल गई कि जो बाबा के पास जाता है उनको श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। लोगों को घर बैठे भी होने लगे, श्री कृष्ण को देखते थे और उनके नजदीक जैसे जा रहे हैं तो श्री कृष्ण दूर चला गया और सफेद वस्त्रधारी एक बूढ़ा ब्राह्मण ये आगे खड़ा है। और श्री कृष्ण आवाज तो नहीं लेकिन संकेत दे रहा है कि अगर मेरे से मिलना है तो पहले इनके पास जाओ। ये हैदराबाद सिंध में एक चमत्कार हुआ, क्रांति कहो तो भी गलत नहीं होगी। और ये इतनी बड़ी न्यूज फैल गई कि अमेरिका में टाइम मैगजीन निकलती है हर महीने, उसमें इंटरनेशनल न्यूज आती है, उस मैगजीन में भी ये न्यूज छपी कि भारत में हैदराबाद सिंध में एक चमत्कारी पुरुष है, जो उसको देखता है उसको श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। ये उस समय अनुभव हुआ। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे एक क्रांति तो ये होने लगी, जो भी आते थे उनको ये अनुभव होता था, और दूसरी क्रांति ये थी कि महिलाओं को ज्यादा होता था, बहनों को ज्यादा होता था, पुरुषों को कम, बहनों को ज्यादा होता था, घर बैठे भी उनको होता था और कोई तो वहां जाते थे तब उनको होता था। तो एक दो उदाहरण हम आपको देंगे। आप है ओम राधे, इनका नाम राधे था, ये करीब 17 साल की थी, स्कूल में बहुत होशियार थी, अवार्ड लेती थी, परंतु साथ साथ इसके अंदर बहुत कलाएं थी, गायन कला, नृत्य कला, संगीत कला, वाद्य कला, कई वाद्य बजाती थी, हारमोनियम और सितार, और कोई भी उसे गीत देता उसका तर्ज निकाल करके खुद ही गाती थी, ये उसकी विशेषता थी, और इसके लिए भी उसको स्कूल में अवार्ड्स मिलते थे। अब अचानक क्या हुआ, इनके फादर की डेथ हो गई, वो भी बिजनेसमैन थे, उनकी भी डेथ हो, जब उनकी डेथ हो गई, पर डेथ क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने जो कर्जा लेकर रखा था या बहुत कुछ करके रखा था, तो अचानक क्या हुआ कि दिवाला निकाल दिया, कर्ज जो कुछ था दिवाला निकाल दिया, और दिवाला जैसे निकला इनका, तो इनका घर दुकान सब गिरवी रखना पड़ा, सब कुछ जैसे खत्म। और बाप और इनके पिता को अचानक हार्ट अटैक आ गया और वहीं उनकी डेथ हो गई। अब पिता ने शरीर छोड़ा इनके फादर ने, और इनका भाई भी था वो भी कोई, उसकी भी डेथ हो गई। अब बस माँ और बेटी यही दो थे, तो माँ तो बहुत रोती थी, इतना रोती थी उस समय सिंध में जब किसी की मृत्यु होती थी तो उसकी जो पत्नी थी वो विधवा बन गई, तो वो बाल खुला रख करके काले कपड़े पहन के जैसे स्यापा करते ना, छाती पीटना, रोते रहना, सारा दिन रात रोते रहना, यही करती थी। और अगर कहीं वो बाहर गई और किसी दुकान के पास गई तो जो बिजनेसमैन लोग होते थे दुकानदार, वो कहते थे अरे ये अपशगुन आई है, ये अपशगुन आई है, इसको हटाओ क्योंकि विधवा हो गई है। तो और फिर वो जैसे जहां से जाती थी तो पानी छिड़कते थे कि ये अपशगुन हो गया, मानो इतना तिरस्कार नारी का, और नारी के प्रति इतना तिरस्कार था कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकती थी, चार दीवारों में ही कैद थी। और जो पुरुष लोग थे हैदराबाद सिंध के, वो तो सिंधवर की थे, उनको कहते थे बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनकी बिजनेस सारी दुनिया में थी, अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, हांगकांग, जापान, सब जगह उनकी बिजनेस, और उनकी जो पत्नियां थी वो अब चार दीवारों में कैद, बिल्कुल शोषित, कोई सोशल एक्टिविटीज नहीं, कुछ भी नहीं। अब इनकी माँ जब इतना रोने लगी, और बेटी तो थोड़ी मॉडर्न जमाने की थी, सुंदर भी थी, वो अपनी माँ की स्थिति देख के बहुत दुखी होती थी। तो किसी ने इसकी इसको कहा कि अपनी माँ को बाबा के पास ले जाओ, बाबा को देखेगी तो उनको शांति का अनुभव होगा। वहाँ जो बाबा के पास जाता है उनको कृष्ण का दर्शन होता है। तो अपनी माँ को लेके गई और उसने जैसे बाबा को देखा वो रोती रोती आई, और बाबा को देखते ही एकदम श्री कृष्ण का उनसे दर्शन हो गया, साक्षात्कार हुआ, और इतना हंसने लगी, इतना हंसने लगी जो बात मत पूछो। तो ये भी एक न्यूज बन गई कि राधी राधे और उसकी माँ रोती रोती आई और हंसती हंसती गई क्योंकि श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। अब इनके पिता की डेथ हुई, भाई की डेथ हुई, ये बाबा जानते थे क्योंकि उनकी भी तो बिजनेस यही थी, हीरे जवाहरातों का वो जेवर बेचते थे। तो बाबा ने इन दोनों को रख लिया अपने पास क्योंकि दिवाला मार दिया था तो इनके पास कोई पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो बाबा ने इनको कहा कि बाबा उस समय भजन बनाते थे, तो इनको कहा क्योंकि आवाज़ बहुत सुरीली थी तो आप ये भजन गाओ, और भजन गाओ और ओम की ध्वनि करते थे बाबा। तो बाबा ने इनको कहा आप ओम की ध्वनि करो और ये भजन गाओ। तो जो सभा बैठती थी, क्योंकि बाबा हमेशा रोज सुबह गीता का पाठ करते थे रोज, और कई आकर के बैठते थे गीता के पाठ में, तो बाबा इनको कहा कि ये जो भजन है आप गाओ और ओम की ध्वनि करो। तो जो जब ये ओम की ध्वनि करती थी तो इनसे राधे का साक्षात्कार हो गया। तो बाबा से एक श्री कृष्ण का साक्षात्कार और इनसे राधे का। बाबा तो 60 साल के थे और ये तो 16-17 साल के थे। तो दोनों जैसे बहुत सुंदर लगता था, दोनों से राधे कृष्ण का साक्षात्कार होता था। और ये देखते देखते बहुत लोग आने लगे। और दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगी दादी प्रकाशमणि जी का। तो दादी प्रकाशमणि जी जो इस विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका थी, 38 वर्षों के लिए बाबा के देह त्याग के बाद, वो भी 15 साल की आयु वाली थी, 15 साल की उम्र थी, 10वीं कक्षा पढ़ती थी, और उसको घर बैठे साक्षात्कार हुआ। और परंतु उसने किसी को बताया नहीं। जब स्कूल गई तो स्कूल में तो लड़कियों के बीच में ये बहुत अफवाह फैल गई थी, बहुत न्यूज फैल गई थी कि दादा लेखराज के पास जो जाता है वो उसको श्री कृष्ण का दर्शन होता है। तो सब लड़कियों ने ठान लिया कि हम जाएंगे बाबा के पास और हमें भी श्री कृष्ण का दर्शन होता होगा। तो इनको सवेरे सवेरे श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और श्री कृष्ण ने उनको कहा कि मेरे से मिलना है तो इसके पास जाओ। तो सफेद वस्त्रधारी बाबा देखा, परंतु ये बाबा को जानती नहीं थी, बाबा को जानती नहीं थी, तो इसीलिए इसको समझ में नहीं आया ये कौन है और क्यों इनके पास जाओ श्री कृष्ण मुझे कह रहा है। लेकिन ये फिर न्यूज जो फैल गई कि श्री कृष्ण के दर्शन होते यहाँ, तो जब स्कूल गई तो स्कूल में लड़कियों ने तैयार किया अपना वो प्रोग्राम बनाया कि हम सब जाएंगे और दर्शन करेंगे श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण की भक्ति सब करती थी और ये भी करती थी। तो शाम को जब घर लौटी स्कूल से, तो ये जब तक पिता से पूछे, क्योंकि इसने कहा मैं पिता से पूछूं क्योंकि कुछ भी काम करना पिता से पूछे बिना कहीं जा नहीं सकती है, तो पिता से पूछने ही वाली थी कि इसके पिता ने इनको कहा कि बेटी मैंने सुना है एक दादा लेखराज है, उनके वहाँ जो जाता है उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, तुम जाकर देख के आओ। क्योंकि ये गीता बहुत पढ़ती थी और कृष्ण का वो मंदिर में जाकर के बहुत पूजा करती थी, बहुत कुछ इनकी भावना ऊंची थी। तो ये शाम को जब अगले दिन सुबह जब गई, पिता ने छुट्टी दी कि आप जाके देख के आओ। तो जब ये गई सवेरे तो बाबा को देखते ही इनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा। बस ये तो उसी दर्शन में मुक्त हो गई, सब वापस चले गए, ये वहीं बैठी रही। अब बाबा इनके पिता को जानते थे क्योंकि हैदराबाद सिंध छोटा सा शहर था, सब बिजनेसमैन एक दो को जानते थे। तो इनके पिता ज्योतिषी भी थे और इनकी जो जन्म पत्री निकाली थी तो उसमें यही देखा कि ये बहुत मीराबाई की तरह भगवान को अपना जीवन अर्पित करेगी, ये उसकी जन्म पत्री में था। तो जब वो ध्यान से नीचे उतरी तो बाबा ने उनको बुलाया अपने पास, और ये पिता बाबा जानते थे कि इनकी जन्म पत्री में ये कि ये श्री कृष्ण को अपना जीवन अर्पित करेगी। तो बाबा ने इनको बुलाकर कहा, क्योंकि बाबा उस समय एक स्कूल बनवाया था, ये सब साथ साथ चल रहा था, और वो स्कूल कौन सा था, लड़कियों का स्कूल था, लड़कियों का बोर्डिंग स्कूल था। तो लड़कियां उस स्कूल में पढ़ती थी और बाबा ने उसमें ये ध्यान रखा कि स्कूल में वो विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाए, गीता का पाठ भी पढ़ाया जाए, सब कुछ पढ़ाया जाए। अब उसके लिए उनको टीचर की ज़रूरत थी और बाबा इसके पिता को जानते थे, तो इसने बाबा ने इनको कहा कि आप अपने पिता को कहो कि मैं अपनी बेटी को श्री कृष्ण को अर्पण करता हूँ और आपको स्कूल में पढ़ाना है, तनख्वाह लेने लिए नहीं परंतु सेवा अर्थ पढ़ाना है, लेकिन उसके लिए अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करना है। अब पिता को जब ये बात बताई तो पिता तो बहुत खुश हुए, पिता ने कहा आपका तो जीवन ही श्री कृष्ण को अर्पित है। तो उसने छुट्टी दी कि जाओ आप जाकर के हाँ गीता का ज्ञान सबको सुनाओ, स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ। अब ये भी समर्पित हो गई, तो मानो एक छोटा सा ईश्वरीय परिवार बन गया, वो सब बच्चे भी थे जो स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां भी थी और भी, और जुड़ते गए, एक अलौकिक परिवार बन गया। बाबा का घर बहुत बड़ा था और भी कई मकान थे, तो इसीलिए वो अलौकिक परिवार में सब रहने लगे। अब अचानक क्या हुआ कि कैसे उस समय भगवान शिव परमात्मा ने एक आदेश दिया कि अब अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। अब पवित्र और योगी बनाना है, ये आदेश मिला तो इन सब ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। करीब 300 बहनें थी। अब इन्होंने जैसे प्रतिज्ञा की तो फिर एक विरोध शुरू हुआ, जो इनके लौकिक परिवार वाले थे वो कहे कि ऐसे कैसे प्रतिज्ञा करा ली। तो बाबा कहते थे ये मैंने नहीं कराई, ये भगवान ने कराई, मैं भी इसी अनुसार ही किया जैसे इन्होंने किया, मैं भी तो गृहस्थ में हूँ, परिवार है मेरा। लेकिन एक चमत्कार ये भी हुआ, तो एक पवित्रता जीवन में लानी है, ये भी एक क्रांति हो गई। तो एक और साक्षात्कार, दूसरी ओर कुमारियां माताएं परिवार के परिवार समर्पित हुए, और तीसरी ओर ये पवित्रता और कि हमें योगी बनना है, हमें पवित्र बनना है, ये प्रतिज्ञा की। अब विरोध हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो बाबा ने उस समय क्या किया, बाबा कराची चले गए। हैदराबाद सिंध तो छोटा शहर था और कई जुड़ते गए, तो बाबा कराची चले गए। जो 18 साल से ऊपर थे वो तो सगीर थे, बालिक थे, तो वो 18 साल के ऊपर वाले तो अपनी प्रतिज्ञा कर सकते हैं। तो सब वो गए कराची, और कराची में एक यज्ञ बना, मानो उसमें करीब 300 भाई बहने से परिवार के परिवार भी थे, सब तपस्या करने लगे। तो कराची में एक बीच है, क्लिफ्टन बीच कराची में, बहुत सुंदर, जैसे जुहू बीच और चौपाटी मुंबई में है, वैसे कराची में सागर का किनारा है क्लिफ्टन बीच। तो वहाँ रोज सवेरे जाती थी, एक्सरसाइज करती थी और साथ साथ ये सफेद शर्ट और हाफ पैंट्स ये पहन के एक्सरसाइज भी करते थे और तपस्या भी करते थे। और फिर तो 14 साल इन्होंने वहाँ कराची में त्याग तपस्या की, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, तो ये अलौकिक माँ बन गई, जगदम्बा सरस्वती इनको नाम दिया और ब्रह्मा बाबा प्रजापिता ब्रह्मा, ये अलौकिक मात पिता के रूप में सबकी पालना करने लगे। और 14 साल किसी का मुंह नहीं देखा, मानो 1937 से लेकर के 1950 तक। अब 1950 माना 14 साल, अब 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, बंटवारा हुआ, और 1939 से लेके 1945 तक, 6 साल तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 39 to 45, जिसमें बहुत लाखों लोग मारे गए, और उसके बाद दुनिया का नक्शा बदल गया, कम्युनिज्म आ गया, यूरोप में परिवर्तन आ गया, बहुत कुछ हुआ, और हिंदुस्तान पाकिस्तान भी हुआ तो उसमें भी हजारों लोग मारे गए पार्टीशन में, और परंतु ये संस्था वहीं रही। इस संस्था को इनका बाल बांका भी नहीं किया, क्योंकि ये तपस्या करती थी। कोई आतंक फैलाने वाले आते थे तो वो पूछते थे कि आप लोग कौन से धर्म के हो, क्योंकि अगर हिंदू हो तो हिंदुस्तान चले जाओ, आपको अगर हिंदू ही रहना है तो यहाँ हिंदू हो के नहीं रह सकते हो, मुसलमान बन जाओ या तो सिर कटवाओ, ओनली 3 ऑप्शंस, चौथा कोई ऑप्शन नहीं, या हिंदुस्तान चले जाओ, या तो मुसलमान बन जाओ, या तो सिर कटवाओ, बस। परंतु इस संस्था को जैसे भगवान ने इतनी रक्षा की, क्योंकि ये वो पूछते थे कि आप कौन से धर्म के हो, तो ये कहते थे मानवता धर्म, हम मानवता की सेवा में है, खुदाई खिदमतगार है, हम खुदा की खिदमत में है, उनकी सेवा कर रहे हैं, उसके लिए हम उनकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं। तो इस संस्था को कुछ भी नहीं किया, और 1950 में जब भारत गणतंत्र बना तब शिव परमात्मा ने इनको संकेत दिया कि अभी आप लोग भारत जाओ, क्योंकि भारत ही विश्व गुरु बनेगा और भारत से ही सारे विश्व में शांति का संदेश जाएगा, और उसमें भी आप एक पहाड़ पर जाओ, ये उनको आदेश मिला। तो ये जो माउंट आबू पहाड़ है ये कराची से बहुत दूर नहीं है, और उस समय की सरकार ने उनको कहा कि आप भले अपना सारा सामान लेकर जाओ, नहीं तो जो हिंदू वहां से भागे थे, सिख भागे थे, सब हाथ खाली नंगे पैर अपनी जमीन जायदाद धन संपत्ति मकान सब कुछ छोड़ करके भागे थे अपनी जान बचाने लिए। लेकिन इस संस्था को छुट्टी मिली कि आप सब कुछ ले जाओ, तो ये उस समय का 1950 का नज़ारा है, और सरकार ने एक बहुत बड़ा जहाज भी उनको दिया कि ये जहाज आप लेकर जहाज में अपना सब सामान ले जाओ। तो करीब 385 भाई बहने सब इस जहाज में बैठे और सारा सामान लेकर भारत में आए। तो कराची से ये जहाज ओखा बंदरगाह उतरा, ओखा ये बंदरगाह है, हार्बर है सौराष्ट्र में, ये जामनगर के पास ओखा, तो वहाँ ये जहाज उतरा और वहाँ से बाय ट्रेन ये आबू आए। आबू में उस समय क्योंकि अंग्रेजों का राज्य था तो अंग्रेज तो थे पर राजाएं महाराजाएं भी बहुत थे, तो उन राजाओं महाराजाओं ने अपना जो समर कैपिटल है वो माउंट आबू में बनाया था। तो माउंट आबू में बहुत सारे महल हैं, जयपुर पैलेस, जोधपुर पैलेस, बीकानेर पैलेस, अलवर पैलेस, भरतपुर पैलेस, उदयपुर पैलेस, ये सब सब छोटे जो डिस्ट्रिक्ट्स है राजस्थान के, उन सब के राजाओं के महल है माउंट आबू में। तो गर्मी के दिनों में इनका समर कैपिटल माउंट आबू था और सर्दी के दिनों में अपने अपने शहर में। तो वहाँ आते थे और जब ये गणतंत्र बना तो इतनी प्रॉपर्टी तो रख नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो महल थे माउंट आबू में उनको होटल बना दिया। अभी आप देखेंगे माउंट आबू जाएंगे वो होटल्स है, या तो होटल है या तो हॉस्टल्स है, क्योंकि विदेश के बच्चे भी वहाँ पढ़ने आते हैं, या तो स्कूल्स है, बच्चों के स्कूल्स, बहुत अच्छे बोर्डिंग स्कूल्स है वहाँ माउंट आबू में। तो यही यहाँ का माउंट आबू का उद्योग है। और मंदिर, ढेर सारे मंदिर है माउंट आबू में, तो तीर्थ स्थान भी है। सबसे बड़ा दिलवाड़ा मंदिर है, 1000 साल पहले बना था दिलवाड़ा मंदिर, जैन टेम्पल है। तो आप माउंट आबू गए होंगे, देखा होगा या जाएंगे देखेंगे। तो ओखा बंदरगाह से ट्रेन निकलती थी जो आबू रोड आती थी, तो 14 साल के बाद इन्होंने दुनिया देखी। उस समय की ट्रेन, 1950 की ये ट्रेन है, और वहाँ और कैसे आबू रोड स्टेशन पर पहुँचे। उस समय जैसे अभी ये वैसे नहीं था, बिल्कुल पटड़ियाँ ही थी। तो ये आबू रोड उतरे और माउंट आबू ये आए। तो माउंट आबू में भी जंगल ही था चारों ओर, बहुत कम बस्ती थी, माउंट आबू की बस्ती कोई ज़्यादा नहीं थी उस समय। तो बाबा बताते थे केवल 10,000 थी बस, बाकी तो स्कूल्स थे, बोर्डिंग स्कूल्स, ये सब यही था। तो अभी तो बहुत कुछ है माउंट आबू में, पर्यटन स्थल है। लेकिन उस समय बाबा कैसे तपस्या करते थे, मम्मा तपस्या करती थी। अब ये जो बहनें आई माउंट आबू में, तो भरतपुर राजा का महल है वहाँ, जहाँ आप लोग माउंट आबू जाएंगे टोल टैक्स भरते हैं माउंट आबू जाने लिए, तो उसके पास में ही भरतपुर राजा का महल है। तो वो इन्होंने किराए पर लिया भरतपुर राजा का महल, तो किराए पर लिया। और वहाँ भी चारों ओर जंगल ही जंगल है, तो जंगल में रहे परंतु साथ साथ तपस्या भी की। तो 1952 में, 50 में तो आए, तो 52 में इन बहनों को निमंत्रण मिले भारत के कोने कोने से, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी भारत आ गए थे। तो रिश्तेदारों ने उनको निमंत्रण दिया कि आपने जो 14 साल तपस्या की है, आप आकर के हमें ज्ञान दो, हमें भी कोई शिक्षा दो। तो फिर ये बहनें कहाँ, वहाँ माउंट आबू से अलग अलग स्थानों पर गई। तो कईयों का मिसाल है, एक मिसाल आपको देंगे, दादी मनोहर इंदिरा जी, आप भी 12 साल की उम्र में आई थी संपर्क में। तो इनके रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे, तो उन्होंने इनको बुलाया कि आप आकर के हमको जो आपने अनुभव किया वो हमको भी कराओ। तो ये जब गई दिल्ली अपने परिवार में गई, तो ये ओम की ध्वनि करती थी, और जैसे ओम की ध्वनि करती थी तो इनसे देवी का साक्षात्कार इनके रिश्तेदारों ने किया। देवी, तो देवी आई है पहाड़ों से, देवी आई है, ये एक आवाज फैल गई। फिर मंदिरों से निमंत्रण मिला, तो मंदिरों में जाकर के ओम की ध्वनि करते थे, तो भक्तों को इनसे देवी का साक्षात्कार होता था। मानो बहुत ये बात फैल गई। और फिर तो जमुना किनारे पर जाते थे, वहाँ भी सत्संग कराते थे। फिर तो इतना विस्तार हो गया जो उन्होंने कहा कि अभी आप यहीं रह जाओ। तो बाबा ने इनको कहा कि अगर आपको कहते यहीं रह जाओ और हमको ज्ञान देते रहो, तो इनको कोई एक मकान लेकर दो। तो फिर दिल्ली में एक मकान लिया, और आबू के बाहर दिल्ली में हमारा पहला सेवा केंद्र खुला अब दिल्ली में। और ये वहाँ रहने लगे, और भी बहनें आई, और दिल्ली में सेवा केंद्र खुला। और फिर सब जगह धीरे धीरे अलग अलग शहरों में हमारे सेवा केंद्र खुलते गए और वहां से भाई बहने माउंट आबू आते रहे। फिर मम्मा ओम राधे उनको कहते थे तो वो भी बाहर जाने लगी, निमंत्रण मिलते गए। तो ये लखनऊ में गई है मम्मा, वहां पर उन्होंने मम्मा से उनको लक्ष्मी का साक्षात्कार होने लगा। मानो साक्षात्कार की धूम भारत में आने के बाद भी होने लगी। तो लखनऊ गई, फिर कानपुर गई, और दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी ये दो हमारी मुख्य बहनें थी जो सदा मम्मा के साथ रहती थी। और दादी प्रकाशमणि तो अंग संग रहती थी, तो बिल्कुल मम्मा की तरह, उनको मुन्नी मम्मा कहते थे, जैसे 3/4 मम्मा, बिल्कुल त्याग तपस्या की मूरत दादी प्रकाशमणि। तो मम्मा का भी बहुत त्याग था, इतना त्याग, इतनी उनकी तपस्या, और देह से न्यारा होना, सवेरे 2 बजे उठ करके तपस्या करना, और जो बाबा की वाणी चलती थी वो उनका विस्तार करना, सब जगह सुनाना, मानो बहुत सेवा भी की और त्याग तपस्या तो थी। तो 1965 में आपने 47 वर्ष की उम्र में अपना देह त्याग किया, माउंट आबू में ही देह त्याग किया। और उसके बाद दीदी मनमोहिनी जी एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगी। तो पहले तो मम्मा थी जिनको जगत अम्बा सरस्वती ये टाइटल दिया शिव बाबा ने, फिर दीदी मनमोहिनी ये बहुत धनी परिवार की थी। इनके फैमिली मेंबर्स में उन्होंने, वो जब भारत में आए तो मुंबई में कॉलेज और हॉस्पिटल खोले, सिंधी लोगों ने कॉलेज हॉस्पिटल खोले मुंबई में, जिसमें जय हिंद कॉलेज, किशनचंद चेलाराम कॉलेज, केसी कॉलेज, जसलोक हॉस्पिटल, ये मुंबई के हॉस्पिटल और कॉलेजेस हैं, ये उन्होंने हैदराबाद सिंध से आके खोले, क्योंकि विदेशों में भी इनकी बहुत बिजनेस थी। तो ये उस परिवार की थी, पर ये भी अपना सब कुछ त्याग करके बाबा के पास आ गई थी। फिर बाबा भी बाहर जाने लगे माउंट आबू से, तो ये दिल्ली में बाबा गए हैं, और ग्रुप्स के ग्रुप्स आते थे माउंट आबू में बाबा के पास। तो ये जलंधर से ग्रुप आया है, सहारनपुर से ग्रुप आया, परिवार के परिवार आते थे, और बाबा बहुत प्यार से उनकी पालना करते थे, बहुत एक परिवार का रूपी था। लेकिन बाबा का यही कहना था कि परमात्मा एक है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, वो सदा शिव है, कल्याणकारी है। तो यहाँ कोई धर्म, जाति, भाषा, प्राण, देश का कोई भेद नहीं है, सब परमात्मा के बच्चे, आपस में आत्माएं भाई भाई है। फिर तो कई सेंटर्स खुलते गए, और बाबा अब पांडव भवन हमारा जो अभी हेडक्वार्टर्स है, मेन हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में, वहाँ बाबा की झोपड़ी है, बहुत सिंपल सी झोपड़ी है, जहाँ बाबा बैठ करके पत्र लिखते थे उस झोपड़ी में, चारों ओर बगीचा है, और ये लेटर लिखते थे बाबा। और तो बाबा का बहुत सुंदर वो स्थान है जहाँ पर हम जाते हैं और बाबा को पत्र लिखते हैं, और अनुभव होता है कि जब भी हम बाबा को पत्र लिखते, कोई भी मन में बात होती है, हमको बाबा से उत्तर मिलता है, अनुभव होता है, वो टचिंग आती है, बहुत कुछ अनुभव करते हैं। तो ये बाबा की झोपड़ी है, और फिर हिस्ट्री हॉल है जहाँ पर बाबा बैठ करके वाणी चलाते थे, जिनको हम ज्ञान मुरली कहते हैं। चारों ओर इस विश्वविद्यालय के कई फोटोज लगे हुए हैं, इसलिए हिस्ट्री हॉल है, जहाँ 200 भाई बहने बैठ सकते हैं इस हिस्ट्री हॉल में। तो यहाँ भी बहुत तपस्या चलती है। और फिर तीसरा है बाबा का कमरा जहाँ बाबा रहते थे, अभी वहाँ भी तपस्या चलती रहती है, बाबा यहीं सोते थे। बहुत बड़ा तो कमरा नहीं है, लेकिन बहुत पावरफुल चार्ज कमरा है। और ब्रह्मा बाबा 93 वर्ष की उम्र में अव्यक्त हुए, देह त्याग किया 93 वर्ष की उम्र में, 93 years, और अंत तक बाबा सीधा खड़े होते थे, कभी लकड़ी नहीं उठाई, कभी कमर नहीं झुकी, कभी चश्मा नहीं लगाया, और 93 वर्ष की उम्र में बाबा ने अपना देह त्याग किया 18 जनवरी 1969 को, 18 जनवरी को बाबा ने अपना देह त्याग किया, और आश्रम के अंदर ही पांडव भवन में माउंट आबू में बाबा की समाधि है, जहाँ पर उनके अंतिम संस्कार किए गए थे, और उनका नाम रखा है टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ। उसके चारों ओर कई महावाक्य लिखे हुए हैं जो शिव परमात्मा ने ब्रह्मा पिता के द्वारा उच्चारण किए, और 18 जनवरी पर बहुत लोग आते हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, तो आप जाएंगे तो आप भी देखेंगे सब। तो ये चार मूल धाम है ब्रह्मा बाबा के, पांडव भवन माउंट आबू में, एक ब्रह्मा बाबा का कमरा, दूसरा शांति स्तंभ, तीसरा बाबा का हिस्ट्री हॉल, और चौथा बाबा की झोपड़ी, और हजारों भाई बहने माउंट आबू आते हैं उसके लिए। तो दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी, ये दोनों निमित्त बनी इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, और इनको कहते थे दो हंसों का जोड़ा, दो शरीर लेकिन एक आत्मा, इनका इतना तालमेल था जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि कैसे दोनों मिल करके इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, और दिन दुगनी रात चौगनी गति से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विस्तार होता गया। और ये सब हमारी जो उस समय यंग सिस्टर्स थी वो हमारी दादियाँ बन गई, दादी माना बड़ी बहन, तो बड़ी बहनें बन गई जिनसे हम लोगों ने प्रेरणा ली और अपना जीवन इसमें समर्पित किया। तो फिर 1972 में हमारा पहला सेवा केंद्र लंदन में खुला, फिर विदेश में गए, और विदेश में लंदन में बहुत सेवा हुई और हमारा पहला सेंटर खुला, और 1974 में हमारा पहला ग्रुप लंदन से माउंट आबू आया, विदेशियों का ग्रुप माउंट आबू में आया और वहाँ तपस्या की। फिर तो विदेशों में हमारे बहुत सेवा केंद्र खुलते गए, और दीदी मनमोहिनी ने 1983 में अपना देह त्याग किया, लेकिन ये संस्था तो बहुत आगे बढ़ती गई। 1969 to 2007 दादी प्रकाशमणि जी ने 38 साल तपस्या की और संस्था चलाई, 2007 में यहाँ शांति वन में ही उनका देह अवसान हुआ, और जो प्रकाश स्तंभ आपने देखा होगा इस हॉल के सामने, वो दादी प्रकाशमणि जी की समाधि है, तो वहाँ पर भी आप गए होंगे। और 1983 में पांडव भवन के सामने ओम शांति भवन बना, जहाँ 3000 भाई बहने बैठ सकते हैं, माउंट आबू में 3000 लोगों का हॉल बिना किसी खंभे के, कोई पिलर नहीं, इतना बड़ा हॉल वहाँ बनाया है। और उस समय हम लोगों ने बहुत कॉन्फ्रेंसेस की, ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस संत सम्मेलन की हुई थी जिसमें शंकराचार्य भी आए थे, तो कई संत महात्माएं आए थे, तो वो कार्यक्रम हुआ। फिर 91 में पांडव भवन से 4 किलोमीटर की दूरी पर हमारा ज्ञान सरोवर परिसर है, जो एकेडमी है, अलग अलग विंग्स के प्रोग्राम वहाँ होते रहते हैं, और 91 में ही पांडव भवन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अपना बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जिसमें 50% जो स्टाफ है, डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ सब समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, और गांव गांव में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी एरिया है सारा आबू, और यहाँ बहुत बीमारियाँ हैं गांव-गांव में। तो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस मोबाइल वैन्स के जरिए गांव-गांव में जाके फ्री सेवा करते हैं इस हॉस्पिटल के द्वारा। यहाँ भी आबू रोड में भी, यहाँ भी ट्रॉमा सेंटर है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारे ट्रॉमा सेंटर में यहाँ एक्सीडेंट्स आते हैं। और एक यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज भी खुला है, एक बूढ़ा घर भी बना है, तो बहुत कुछ है यहाँ आबू रोड में। तो इसीलिए ये ग्लोबल हॉस्पिटल है माउंट आबू में। और ये जो हॉल जिसमें आप सभी बैठे हैं, इसका नाम है डायमंड जुबली हॉल, हम शॉर्ट में डायमंड हॉल कहते हैं। 96 में ये बन के तैयार हुआ था, जब इस संस्था के 60 साल हुए थे, 36 to 96, 60 साल हुए थे शांति वन में ये हॉल बना, जहाँ 20,000 लोग बैठ सकते हैं। अभी तो ये पर्दा लगा दिया है क्योंकि इतने हजार नहीं हैं, नहीं तो जब हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो ये हॉल भी छोटा पड़ जाता है। तो ये डायमंड हॉल है, और इस हॉल में कई कार्यक्रम हमारे होते रहते हैं। तो दादी प्रकाशमणि ने 85 वर्ष की आयु में अपना देह त्याग किया, 25 अगस्त 2007 में जो उनका टावर ऑफ लाइट प्रकाश स्तंभ बना है। फिर दादी जानकी जी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। दादी प्रकाशमणि के देह त्याग के बाद दादी जानकी जी विदेशों में रहती थी, और जिस जिस देश में जाती थी वहाँ वहाँ सेवा केंद्र खुल जाता था। और इन्होंने 104 साल की आयु में अपना देह त्याग किया, 104 साल की आयु में अपना देह त्याग किया। तो और 2020 में इन्होंने अपना देह त्याग किया, और उनका भी यादगार स्थान है शक्ति स्तंभ। दादी जानकी ने भी देश विदेश में बहुत सेवाएं की। हमारा दादी प्रकाशमणि ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ इस तरफ, तो वहाँ ट्रेनिंग्स होती रहती है कुमारियों की, जो टीचर बनती है सेवा केंद्रों पर रहने के लिए। और 1,00,000 की सभा में भी भाषण किए दादी जानकी जी ने। और दादी जानकी जी के साथ दादी हृदय मोहिनी, जिसको हम गुलजार दादी कहते थे, आप भी साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे, और आपने अपना देह त्याग किया 2021 में, और इनका यादगार अव्यक्त लोक, जो आपने देखा होगा अव्यक्त लोक, तो वो वहाँ उनकी समाधि है दादी हृदय मोहिनी जी की। तो तीन दादियाँ हमारी जो मुख्य है, इनकी यहाँ समाधि है, और पिता श्री ब्रह्मा बाबा की माउंट आबू में। तो दादी हृदय मोहिनी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, आप बहुत सुंदर ट्रांस मैसेंजर थे, ट्रांस में बहुत जाते थे और कई संदेश लाते थे। और ब्रह्मा बाबा के देह त्याग के बाद आप वो रथ बनी जिसके माध्यम से शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा उनके तन में प्रवेश होकर वाणी चलाती थी, जिसको हम अव्यक्त वाणी कहते हैं। तो वो अव्यक्त वाणी हम लोग ट्रांसमिट करते थे हमारे पीस ऑफ माइंड चैनल में और कई चैनल्स में। तो इसीलिए आप लोगों ने भी देखा होगा, जिन्होंने ये कार्यक्रम देखा है वो हाथ उठाएं, थोड़ों ने देखा है। तो 2017 तक ये हमारा कार्यक्रम चला, और फिर 2021 में इन्होंने अपना देह त्याग किया, और वर्तमान हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है दादी रतन मोहिनी जी। ये सब शुरू के हैं उस समय के, 1936 के, इस समय उनकी आयु 100 वर्ष से ऊपर है। आप सोचो, यहाँ आई थी मिलने के लिए, आई आपसे, यहाँ आई है, यहाँ होके गई, सबसे मिलके गई। हाँ, तो इस समय 100 वर्ष से ऊपर है इनकी आयु। ये भी 10-11 साल की थी जब आई संस्था में अपनी माँ के साथ, और तब से हैदराबाद सिंध से ही आप समर्पित हो गए। तो उसी रूप से हमारा कार्य चलता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा बोर्ड है और सब बहुत कुछ, हमारी कारोबार चलते ही रहते हैं, मैनेजमेंट कमिटीज हैं, हमारे कई ऐसी संस्थाएं हैं जो जिसको हम कहेंगे कि रजिस्टर्ड है, चारों ओर बहुत कुछ है। और ये कारोबार दिन प्रतिदिन बेहद रूप और भी लेता जा रहा है और हमारे जैसी हजारों बहनें समर्पित हैं। तो हम तो अंत में यही कहेंगे कि आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो कई हमसे पूछते हैं, बहन जी आप इतना सब कुछ हमें ज्ञान देते हो, आपकी फीस क्या है? तो फीस मांग पूछते हैं ना, स्कूल कॉलेज में फीस होती है, तो ये यूनिवर्सिटी भी है। तो हम कहते हैं हमारी फीस है 5 खोटे पैसे, 5 खोटे पैसे। तैयार हो देने के लिए? कौन से खोटे पैसे? सबके पास है ये खोटे पैसे, है सबके पास? कौन से खोटे पैसे? हाँ समझ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 खोटे पैसे देके जाओ और 1 आना लेकर जाओ। आना होते हैं बड़े, 16 आना है रुपए में, एक तो 1 आना लेकर जाओ, 5 खोटे पैसे देकर जाओ। वो गीत गाते ना, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। तो यहाँ से क्या लेके जाएंगे और क्या दे के जाएंगे? क्या चाहिए? भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। ये यज्ञ में अपनी बुराइयों को स्वाहा करें, इसलिए शुरू में कहा ये यज्ञ है। और भगवान हमको कहते अपनी बुराइयों को स्वाहा करो, तभी ये संसार बदल कर कलयुग से सतयुग आएगा, नर नारायण बनेगा, नारी लक्ष्मी बनेगी, मानव देव बनेगा, मानो इस संसार का परिवर्तन होगा और ये भारत विश्व गुरु बन करके सारे विश्व में शांति लाएगा। यही हमारे महावाक्य हैं, भगवान का आदेश है जो हम पालन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब फिर से 3 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे।